भैया आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। क्यों, क्या हुआ, पुलिस स्टेशन क्यों आना है, तुम ठीक तो है? पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर ही माधव बुरी तरह से घबरा गया। शिखा की चिंता सताने लगी उसे। मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। उसको यूं परेशान होते देखकर फोन के दूसरे तरफ मौजूद शिखा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, बाकी बात आपको यहाँ आकर पता चल जाएगी। ठीक है, मैं अभी ही यहाँ से निकल रहा हूँ, तो ध्यान रखना अपना, माधव ने जवाब दिया और हड़बड़ी में अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसने अभी कदम आगे बढ़ाया ही था कि अक्षय की ठहरी हुई गंभीर आवाज़ उसके कानों से टकराई। माधव, क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में कौन है और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माधव, जो शिखा की चिंता में सब भूल गया था, अब उसे ध्यान आया कि वो तो अक्षय के साथ बैठकर बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर वो भी परेशान ही गया होगा। असल में शाम का वक्त था, अक्षय उससे मिलने आया था। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि माधव के पास शिखा का फ़ोन आया और अब वो जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचने की हड़बड़ी में अक्षय को ही भूल गया। खुद को संभालते हुए माधव अक्षय की ओर पलटा और विचलित स्वर में जवाब दिया, माफ़ करना, अभी मुझे जाना होगा, शिखा पुलिस स्टेशन में है, पता नहीं क्या हुआ है, उसने मुझे कुछ बताया नहीं, बस वहाँ बुलाया है, मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँचना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर माफ़ी मांगते हुए माधव फिर जाने को पलटा तो अक्षय भी उसके साथ चल पड़ा। मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे। पल भर को माधव कुछ झिझका, फिर अक्षय ने दोस्ती का वास्ता देकर उसे मना लिया और दोनों वहां से निकल गए। अर्पिता, अर्पिता का नाम पुकारते हुए पसीने से तर राधिका बदहवास से उसकी ओर दौड़ गई, जो पुलिस स्टेशन में एक कोने में लगी बेंच पर बैठी हुई थी। अर्पिता राधिका की आवाज़ सुनकर उठकर खड़ी हो गई। इतने में राधिका दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसके चेहरे व शरीर को अपनी हथेली से टटोलते हुए विचलित स्वर में सवाल करने लगी, अप्पू तू ठीक तो है, कहीं लगी तो नहीं तुझे, क्या हुआ है बता मुझे, तो यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है? राधिका, जो अर्पिता के एक कॉल पर सब काम धंधे छोड़कर बदहवास से यहाँ पहुँची थी और घर से यहाँ आते तक में जाने कितने ही उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आए थे, अर्पिता की चिंता में परेशान सी वो यहाँ पहुँची थी। घबराई हुई सी एक सांस में सवाल पर सवाल करती रही, दी आप पहले शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, अर्पिता ने उसकी बाँह थामते हुए गंभीरता से कहा, जैसे उसे अपने ठीक होने का विश्वास दिला रही हो। पर राधिका अब भी परेशान थी, उसने चिंतित निगाहों से उसे देखा और विचलित स्वर में सवाल किया, हुआ क्या है बता मुझे, तो यहाँ क्या कर रही है? अगर मैं बताऊंगी कि मैंने आज कितनी हिम्मत का काम किया है तो आपको मुझ पर प्राउड फील होगा, अर्पिता ने खुद पर इतराते हुए बड़ी ही अदा से अपने कंधे से आगे आते बालों को झटकते हुए कान के पीछे किया। राधिका, जो परेशान से उसे देख रही थी, उसकी नज़र अर्पिता की कोहनी पर चली गई, जो कुछ छिल गई थी और उसे खून रिस रहा था, अब तक सूख भी गया था, कितना छिल गया है, ये कैसे हुआ? राधिका ने उसकी बाँह पकड़कर उसकी कोहनी को देखते हुए चिंतित स्वर में सवाल किया। अब अर्पिता का ध्यान भी अपनी कोहनी पर गया, चिल यार दी, इतनी छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है, अर्पिता ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। पर जैसे ही नज़र राधिका के नाराजगी भरे चेहरे और गुस्से भरी घूरती निगाहों पर पड़ी, उसके मुस्कुराते लब सिमट गए। ज्यादा नाटक नहीं, चुपचाप बताऊं आज कौन सा कारनामा किया है तुमने कि खुद को चोट भी लगवा ली और पुलिस स्टेशन भी पहुंच गई। सारी चिंता फिक्र अब गुस्से व नाराजगी में बदल चुकी थी और अब वो खड़ूस बड़ी बहन के अवतार में आ चुकी थी, जिसकी सख्ती देखकर अर्पिता एकदम शरीफ और शांत बच्ची बन गई। आज मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत या शरारत नहीं की है, बल्कि एक बहुत अच्छा काम किया है, अर्पिता ने मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी पलकें झपलाई। राधिका ने आंखें छोटी छोटी करके तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए सवाल किया, अब उस अच्छे काम का नाम भी बता दो, आज मैंने एक लड़की को ना सिर्फ सड़क छाप आवारा लड़कों से बचाया, बल्कि उनकी पिटाई करके उन्हें सबक भी सिखाया, उनकी वीडियो बनाकर पुलिस में पकड़वा भी दिया, इतना हिम्मत वाला काम किया है मैंने और उसी में मुझे जरा सी चोट लग गई, पर आप अपनी छोटी बहन की इस ब्रेवरी पर उसे शाबाशी देने की जगह मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। शुरू में तो अर्पिता ने बड़े ही शौक से अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए और अंत में अपने निचले होंठ को बाहर निकाला, उदास चेहरा बनाए मायूस नाराजगी भरी निगाहों से उसे देखने लगी, जैसे जाने कितना अत्याचार कर दिया हो राधिका ने उस बेचारी भोली बच्ची पर। राधिका कुछ पल नाराजगी भरी निगाहों से उसे घूरती रही, फिर तंजिया लहजे में बोली, हाँ वाकई आज तुमने काम तो शाबाशी पाने वाला किया है, तुम्हारी इस बहादुरी भरे कारनामे पर तो तुम्हें वीरता पुरस्कार दे देना चाहिए। राधिका ने ताना मारा था उसे और अप्पू ने दयनीय चेहरा बना लिया कि कहीं आगे और फटकार न लग जाए उसे। आखिरकार राधिका ने उस पर तरस खा ही लिया, अपनी सख्ती त्यागते हुए उसने चिंतित निगाहों से उसे देखा और कोमल स्वर में सवाल किया, और कहीं भी लगी है तुम्हें चोट? नहीं, बस कोहनी जरा सी छिल गई है, उन आवारा लफंगों को मारते हुए सड़क पर गिर गई थी ना, इसलिए, अर्पिता ने क्यूट सी शक्ल बनाकर झट से इनकार में सर हिला दिया। राधिका के दिल में सुकून सा उतरा था, अब तक वो अर्पिता के लिए इतनी परेशान थी कि किसी और चीज पर उसका ध्यान ही नहीं गया था, पर अब उसकी नजर अर्पिता के बगल में खड़ी लड़की पर पड़ी, जो जाने कब से उसे ही देखे जा रही थी। राधिका ने अपने माथे पर बल डालते हुए दिमाग पर जोर दिया, चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था उसे, पर बहुत कोशिश के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। अर्पिता ने राधिका को उस लड़की को इतने ध्यान से देखते पाया तो चहकते हुए बोल पड़ी, दी यही वो लड़की है जिसे वो बदमाश आवारा लफंगे छेड़ रहे थे, मैंने बचाया इसे, खुद पर ही इतरा रही थी वो, खुशी से फूली नहीं समा रही, खैर काम भी उसने सराहनीय किया था। राधिका ने उसकी बात सुनी तो प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुरा दी,
बहुत अच्छा किया तुमने। अगर आज तुम किसी की मदद नहीं करोगी तो कल को जब तुम किसी मुसीबत में होगी तो कोई तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा। फिर हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत है। पर आगे से ध्यान रखना, किसी की मदद करते हुए अपने लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाते। तुमने वीडियो बना ही ली थी, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, तो उन आवारा लड़कों से उलझना नहीं चाहिए था तुम्हें। बड़ी बहन थी वो उसकी, दुनिया देखी थी उसने, और आज तक अपनी बहन को इस दुनिया की बुरी नजर से बचाकर रखा था। अभी भी उसे सिर्फ उसकी ही फिक्र थी, क्योंकि नहीं चाहती थी कि अपनी नादानी में अच्छाई करने के चक्कर में वो खुद किसी मुसीबत में फंस जाए, और ऐसे लड़कों का कोई भरोसा भी नहीं होता। अर्पिता समझ रही थी उसकी बात, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सहमति में सर हिला दिया। मैं आगे से आपकी बात ध्यान में रखूंगी। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अक्षय के साथ माधव ने वहाँ कदम रखा और भैया पुकारते हुए वो लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि शिखा थी, उसके सीने से लग गई। माधव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहले ही परेशान था वो, जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे उसके मन में, अब तो और ज्यादा घबरा गया। क्या हुआ शिखा, तू ठीक तो है? माधव ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए चिंतित स्वर में सवाल किया। राधिका, अक्षय और माधव को यहाँ देखकर शौक हो गई थी। शिखा को माधव के सीने से लगते देखकर वो चौंक गई। एकाएक आंखों के आगे सालों पहले का वो दृश्य घूम गया, जब माधव की फैमिली उसे देखने आई थी। सालों पुरानी बात थी तो यादें कुछ धुंधली हो गई थी। राधिका की नजर एक बार फिर शिखा पर जाकर ठहर गई और उसके चेहरे के बदलते भाव ये जाहिर कर गए थे कि अब उसे सब समझ आने लगा था।
मैं ठीक हूँ भैया, शिखा ने इतना कहा ही था कि कांस्टेबल वहाँ आ गई। आप इनके गार्जियन हैं? जी, पर बात क्या हुई है? माधव परेशान सा कभी उस लेडी कांस्टेबल को देख रहा था तो कभी शिखा को, जिसकी आंखें नम थीं और घबराई हुई सी वो उसके सीने से लगी हुई थीं। आपकी बहन को कुछ लड़के बीते कुछ दिनों से परेशान कर रहे हैं, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं? ये सवाल इंस्पेक्टर ने किया था, जिसे सुनकर माधव बुरी तरह से चौंक गया था। उसके चेहरे की हैरानी साफ जाहिर कर रही थी कि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर माधव ने चौंकते हुए शिखा की ओर नजरें घुमाई और हैरानगी से सवाल किया, शिखा बेटा, इंस्पेक्टर ये क्या कह रही हैं? क्या सच में तुम्हें लड़के परेशान कर रहे थे? शिखा ने जवाब देने की जगह अपनी निगाहें झुका ली और सिसकने लगी। उसकी खामोशी पर इंस्पेक्टर ने ही आगे कहा, आपकी बहन ने हमें खुद बताया है कि कुछ लड़के बीते कुछ दिनों से इन्हें परेशान कर रहे हैं। आज भी वो कॉलेज के बाहर इन्हें छेड़ रहे थे और पीछा करते करते बस स्टैंड तक आ गए थे। ये तो शायद डर के कारण आज भी चुपचाप सब सहली थी, पर उनके ही कॉलेज की दूसरी लड़की ने जब उन आवारा लड़कों को इन पर गंदे कमेंट्स करते देखा तो वीडियो बनाकर हमें इन्फॉर्म किया और हमारे वहां पहुंचने तक उन लफंगों को भी वहां से भागने नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने संक्षेप में सारी बात जब माधव को बताई तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी, और शिखा की खामोशी इस बात का सबूत थी कि उनका कहा एक एक शब्द सच था। शिखा, अगर ये सब सच है तो तूने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? माधव ने नरम लहजे में उससे सवाल किया। शिखा ने अब निगाहें उठाकर नम आंखों से उसे देखा और रुंधे धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं डर गई थी भैया। आप कहते हैं कि ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, इसलिए मैं उनकी हरकतों को नज़रअंदाज कर देती थी। मैं तो ये भी कहता हूँ ना बच्चे, कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम गलत बर्दाश्त करेंगे तो गलत करने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है और वो हमें कमज़ोर समझ कर हम पर हावी होने लगते हैं। तुमने पहले दिन नज़रअंदाज किया तो ठीक था, पर जब वो रोज तुम्हें परेशान करने लगे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारी खामोशी के कारण उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। कल को अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देते तो हम क्या करते? तुमने तो हमें कुछ बताया भी नहीं था। माधव ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। शिखा ने अपना सर झुका लिया और सुबकने लगी। शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। माधव, रहने दो, बच्ची है अभी, घबरा गई होगी। सही वक्त पर बात बाहर आ गई। शिखा सुरक्षित है, वो लड़के भी पकड़े गए, यही बहुत है। तुमने प्यार से उसे समझा दिया तो अब आगे से ऐसा कुछ हो तो अपने तक रखने की जगह तुम्हें बताएगी, ताकि बात को यहाँ तक पहुँचने से पहले ही उसे संभाला जा सके। वो पहले ही डरी हुई है, अब इस बात को रहने दो। हमें तो उस लड़की का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने इतनी हिम्मत दिखाकर उन लड़कों को पकड़वाया और शिखा को उनसे बचाया, वरना जाने कब तक ऐसा ही चलता रहता और हमें कोई खबर ही नहीं होती। सारी बात सुनने और पूरी स्थिति को समझने के बाद अक्षय ने बेहद शांति से सारी परिस्थिति को संभाल लिया था। एक बहन का भाई था वो, इसलिए इस वक्त माधव की चिंता समझ रहा था और साथ ही शिखा का डर भी देख रहा था, इसलिए उसने बात का रुख मोड़ते हुए उसे यहीं खत्म करना चाहा। अक्षय ने आंखों से ही माधव को कुछ इशारा किया तो उसने सर हिलाया और शिखा को प्यार से पुचकारते हुए समझाने लगा, डांट कहाँ रहा हूँ मैं तुम्हें जो तुम रोने लगी, बस समझा रहा हूँ कि आगे से दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। अभी तेरा भाई जिंदा है, तेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आगे से अगर कुछ भी होता है तो बेझिझक मुझे बताना, मैं सब संभाल लूंगा और तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। शिखा ने सर हिलाते हुए हामी भर दी। माधव ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। मैडम जी, वो लड़की कौन है जिसने उन लड़कों को पकड़वाया? माधव के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने एक तरफ खड़ी अर्पिता की ओर इशारा करते हुए गर्वित स्वर में जवाब दिया, वो रही वो निडर और बहादुर बच्ची जिसने सबूत भी इकट्ठे किए, पुलिस में रिपोर्ट भी की और अपनी फिक्र न करते हुए उन लड़कों को पकड़वाने में हमारी पूरी मदद भी की। माधव के साथ साथ अक्षय ने भी उस दिशा में देखा। दोनों ही राधिका को वहां खड़ा देखकर चौंक गए। माधव तो अर्पिता को देखकर पहचान गया कि वो राधिका की छोटी बहन है, पर अक्षय, जो पहले कभी उससे नहीं मिला था, वो हैरत से उन्हें देखने लगा। टू बी कंटिन्यूड।